Central to the gospel of Jesus Christ is
यीशु मसीह के सुसमाचार का केंद्र उसके बच्चों की अनंत प्रगति के लिए पिता की उद्धार की योजना है। आधुनिक प्रतिकरण में समझाई गई यह योजना हमें बहुत सी बातों को समझाने में मदद करती है जिनमें हम नश्वरता का सामना करते हैं। मेरा संदेश इस योजना के विरोध में आवश्यक भूमिका पर केंद्रित है। पिता के बच्चों के लिए नश्वर जीवन का उद्देश्य उन अनुभवों का उपलब्ध कराना था जो परिपूर्णता के ओर आगे बढ़ने के लिए जरूरी हैं और अनंत जीवन के वारिस के रूप में उनकी दिव्य नीति को समझना है। इस परीक्षा के द्वारा प्रगति के परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने का चुनाव करेंगे। परीक्षा लेने के लिए हमारे परीक्षा का पालन करने का चुनाव करेंगे। हमारी परीक्षा के लिए हमारे पास कम से कम दो में से एक को चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। चुनने की स्वतंत्रता के लिए विरोध का होना बहुत जरूरी है जिससे हम अपने चुनने की स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं। शेष योजना भी जरूरी है। जब हम गलत चुनाव करते हैं जैसा निसंदेह रूप से हम करते हैं हम पाप द्वारा अशुद्ध हो जाते हैं और हमारी अनंत नियति की ओर आगे बढ़ने के कार्य के लिए हमें शुद्ध किया जाना जरूरी है। पिता की योजना ऐसा करने का मार्ग उपलब्ध कराती है। न्याय की अनंत मांग को पूरा करने का मार्ग उद्धारकर्ता हमारे पापों से मुक्त करने के लिए मूल्य चुकाता है। वह उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। अनंत पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र जिसका प्रायश्चित बलिदान जिसके कष्ट हमारे पापों का मूल्य चुकाते हैं यदि हम उन गलतियों का पश्चाताप करेंगे। योजना की योजनाबद्ध भूमिका के उत्पन्न उदाहरणों में से एक मॉर्मन की पुस्तक लेही की उसके पुत्र याकूब को दी गई शिक्षाओं में पाई जाती है। यह आवश्यक है कि सब कामों में विरोध हो। यदि ऐसा ना होता तो धार्मिकता नहीं लाई जा सकती थी, ना दुष्टता, ना पवित्रता, ना दुख, ना ही अच्छाई और ना ही बुराई ना होती। इसके परिणाम स्वरूप लेही आगे कहता है, परमेश्वर प्रभु ने मनुष्य को यहोवा का कार्य करने के लिए छूट दी है। इसलिए मनुष्य स्वयं के लिए कार्य नहीं कर सकता था यदि वह एक अन्य या दूसरे के द्वारा फुसलाया नहीं जाता। इसी प्रकार आधुनिक प्रकटीकरण में प्रभु घोषणा करते हैं, यह जरूरी है कि शैतान मानव संतान को लालच दे वरना वे स्वयं के लिए कार्य नहीं कर सकते। अदन की वाटिका में विरोध आवश्यक था। यदि आदम और हवा उस चुनाव को नहीं करते जिसके कारण नश्वरता आई, लेही सिखाता है वे निर्दोष अवस्था में ही रहते, कुछ अच्छा नहीं करते क्योंकि उनके पाप का पता नहीं था। आरंभ से ही चुनने की स्वतंत्रता और उसका विरोध पिता की योजना और शैतान की उसके विरुद्ध विरोध केंद्र रहा है। जैसा प्रभु ने मूसा को प्रकट किया था, स्वर्ग की परिषद में शैतान ने मनुष्य की चुनने की स्वतंत्रता का विनाश करना चाहता। यह विनाश शैतान के सुझाव की शर्तों के साथ स्वाभाविक था। वह पिता के सम्मुख आया और कहा, देखो मुझे भेजो, मैं आपका पुत्र बनूंगा और मैं संपूर्ण मानव जाति को मुक्ति दूंगा ऐसा कि एक भी आत्मा नहीं खोएगी और अवश्य ही मैं इसे करूंगा, इसलिए मुझे अपना सिंहासन सौंप देना। इस प्रकार शैतान पिता की योजना को पूरा करने का प्रस्ताव रखा जिससे पिता का उद्देश्य पूरा नहीं होता था और शैतान को पिता को अपना सिंहासन देना पड़ता था। शैतान के प्रस्ताव ने परिपूर्ण समानता को अनुष्ठित किया था। यह संपूर्ण मानव जाति को मुक्ति दिला देता, एक भी आत्मा नहीं होती, किसी के पास सुनने की कोई स्वतंत्रता नहीं होती और इसके लिए कोई विरोध की जरूरत भी नहीं होती, कोई परीक्षा नहीं होती, कोई असफलता नहीं होती, कोई सफलता नहीं होती, इस उद्देश्य को पाने के लिए कोई प्रगति नहीं होती जो अपने पिता अपने बच्चों के लिए चाहता है। धर्मशास्त्र लिखते हैं कि शैतान की विरोध का कारण स्वर्ग में युद्ध हुआ, जिसमें पिता के एक तिहाई बच्चों ने पिता की योजना की योजना को चुनने का और शैतान के विद्रोह को अस्वीकार करते हुए नश्वर जीवन का अनुभव का अधिकार प्राप्त किया था। शैतान का उद्देश्य स्वयं के लिए पिता का सिंहासन और शक्ति पाना था। इसीलिए पिता ने कहा था, क्योंकि शैतान ने मेरा विरोध किया, इसके कारण मैंने उसे नीचे धकेल दिया उन आत्माओं के साथ जिन्होंने अपने चुनने की स्वतंत्रता का उपयोग उसका अनुसरण करने के लिए किया है। बिना शरीर की आत्माओं के रूप में नीचे स्वतंत्रता में धकेल दिया। शैतान और उसके अनुयायी पिता के बच्चों को लालच और धोखा और वश में करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार यह शैतान है जो पिता की योजना का विरोध करता है और नष्ट करना चाहता है। असल में वह इसे आगे बढ़ाता है, क्योंकि विरोध के कारण ही चुनाव किए जाते हैं और यही है चुनाव करने का मौका देते हैं जो प्रगति की ओर आगे बढ़ाता है, और यही पिता की योजना का उद्देश्य है। महत्वपूर्ण रूप से पाप करने का लालच नश्वरता में केवल एक ही प्रकार का विरोध नहीं है। पिता लेही सिखाता है, यदि पतन ना हुआ होता तो आदम और हवा निर्दोष अवस्था में ही बने रहते, कोई आनंद ना होता क्योंकि वो कोई दुख ना जानते थे। नश्वरता के बिना विरोध के अनुभव के वह सब बातें एक में ही मिश्रित होनी चाहिए, जिसमें कोई खुशी या दुख नहीं होता। इसलिए पिता लेही आगे कहता है, सब कुछ की रचना करने के पश्चात मनुष्य के अंत में उसके अनंत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विरोध की जरूरत थी, यहाँ तक कि वर्जित फल का विरोध में जीवन का वृक्ष था, एक मीठा और दूसरा कड़वा। उद्धार की योजना के इस भाग का उसकी शिक्षा उनके साथ समाप्त होती है, लेकिन देखो हर बात उसके ज्ञान के अनुसार की गई है जो सब बातों को जानता है। आदम का पतन हुआ ताकि मनुष्य हो, और मनुष्य हैं ताकि वे उन्हें आनंद प्राप्त हो। कठिन परिस्थितियों में विरोध करना, जिनका सामना हम नश्वरता में करते हैं, योजना का एक भाग है जो नश्वरता में हमारी प्रगति की ओर आगे की ओर ले जाता है। हम सब उन विरोधों का अनुभव करते हैं जो हमारी परीक्षा लेते हैं। इनमें से कुछ परीक्षाएं पाप करने का लालच होती हैं, कुछ व्यक्तिगत पाप से भिन्न नश्वर चुनौतियां होती हैं, कुछ बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है, कुछ लगातार चलती है, कुछ थोड़े समय के लिए होती है। इनमें कोई नहीं बचता। विरोध हमें वैसा बनने की ओर आगे बढ़ने का मौका देता है जैसा हमारा स्वर्गीय पिता हमें बनाना चाहता है। मार्मन की पुस्तक अनुवाद करने के बाद जोसेफ स्मिथ को एक प्रकाशक की खोज थी। यह आसान नहीं था, इस भारी भरकम वस्त्रलिपि की जटिलता और छपाई की और हजारों पत्तियों को बनाने का खर्च बहुत भयभीत करने वाला था। जोसेफ पहले ई.बी. ग्रेडिन के पास गए, जो कि पाल्मीरा का प्रिंटर था, जिसने मना कर दिया। फिर वह दूसरे पाल्मीरा एक प्रिंटर के पास गए, जिसने भी मना कर दिया। उन्होंने 40 किलोमीटर दूर रॉचेस्टर की यात्रा की और पश्चिमी न्यूयॉर्क के नामी प्रकाशक से बात की, उसने भी मना कर दिया। अन्य रॉचेस्टर प्रकाशक तैयार हो गया, परंतु परिस्थितियों के कारण इसे स्वीकार नहीं किया जा सके। हफ्ते गुजर गए और जोसेफ अवश्य ही अपने दिव्य आदेश को पूरा करने से विरोध से घबरा गया। प्रभु ने इसे सरल नहीं बनाया था, लेकिन उसने अवश्य ही इसे संभव बनाया था। जोसेफ का पांचवा प्रयास पाल्मीरा प्रकाशक ग्रीन के पास दूसरी बार जाना सफल हुआ। सालों बाद जोसेफ को लिबर्टी जेल में कई महीनों के लिए कष्टपूर्ण कारावास में डाला गया। जब उसने राहत के लिए प्रार्थना की, प्रभु ने उससे कहा, ये सब बातें तुम्हें अनुभव देंगी और तुम्हारी भलाई के लिए ही होंगी। हम सब अन्य प्रकार के नश्वर विरोध को जानते हैं जो हमारे व्यक्तिगत पापों के कारण नहीं होते हैं, जैसे बीमारी, अयोग्यता और मृत्यु। थॉमस एस. मॉन्सन ने हमें समझाया, आप में से कुछ कभी कभी अपने कष्टों में चिल्ला उठते हैं आश्चर्य करते हुए, क्यों परमेश्वर स्वर्गीय पिता उन परीक्षाओं से गुजरने की अनुमति देता है जिनका आप सामना करते हैं। हालांकि हमारा नश्वर जीवन सरल होने या निरंतर सुखद देने के लिए नहीं था। हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि कठिन चुनौतियां, हृदय तोड़ने वाले दुख और मुश्किल चुनाव द्वारा हम सीखते और उनसे आगे बढ़ते हैं, और हमारे प्रत्येक उन अंधकार में दिनों का अनुभव करता है जब कोई प्रिय गुजर जाता है। कष्टपूर्ण समय हमारे स्वास्थ्य ठीक नहीं होते हैं, अकेले होने की अनुभूतियां होती हैं जब जिससे हम प्रेम करते हैं लगता है हमें छोड़ दिया है। ये और अन्य परीक्षाएं हमारे सहने की योग्यता की वास्तविक परीक्षा होती है। शपथ के दिन का पालन करने के लिए हमारे प्रयासों का सुधार विरोध के कम तनावपूर्ण उदाहरण को प्रस्तुत करता है। हमारे पास शपथ के दिन का आदर करने की आज्ञा है। हमारे पास कुछ चुनाव इस आज्ञा का उल्लंघन कर सकते हैं, लेकिन अन्य विकल्पों में शपथ के दिन समय कैसे व्यतीत करना महज एक प्रश्न है। क्या हम केवल उसे करेंगे जो अच्छा है या बेहतर है या सर्वोत्तम है? लालच का विरोध को दर्शाने के लिए मॉर्मन की पुस्तक तीन उपायों की व्याख्या करती है जो शैतान अंतिम दिनों में उपयोग करेगा। पहला, वह मानव संतान हृदय में द्वेष उत्पन्न करेगा और उन्हें भलाई के विरुद्ध उत्तेजित करेगा। दूसरा, वह शांत करेगा और सदस्यों को सांसारिक सुरक्षा का धोखा देगा कहते हुए कि सियोन संपन्न है, सब कुछ ठीक है। तीसरा, वह हमसे कहेगा कोई नरक नहीं है और मैं शैतान नहीं हूं, क्योंकि कोई शैतान नहीं है, इसलिए कोई सही और गलत नहीं है। इस विरोध के कारण हमें चेतावनी दी जाती है, सियोन में आराम से ना रहे। गिरजा इसके दिव्य मिशन में और हम अपने व्यक्तिगत जीवनों में लगता है आज अत्यधिक विरोध का सामना कर रहा है। शायद जब गिरजा संख्या में आगे बढ़ता है और हमारे सदस्य विश्वास और आज्ञाकारिता में प्रगति करते हैं, शैतान अपने विरोध की शक्ति बढ़ाता है ताकि वह निरंतर सब बातों में हमें इस विरोध का सामना करना पड़ सके। इस विरोध में कुछ गिरजे के सदस्यों की ओर से भी होते हैं। कुछ हैं जो भविष्यवक्ता के निर्देश का प्रतिरोध करने के लिए व्यक्तिगत विचार या समझ का उपयोग करते हुए स्वयं को चुनी हुई संस्थाओं से मांग कर लिया गया वफादार विरोध का नाम देते हैं। यह लोकतंत्र के लिए कितना भी उचित क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के राज्य के शासन में इस अवधारणा की कोई मान्यता नहीं है। जहां प्रश्नों का तो आदर होता है लेकिन विरोध का नहीं। एक अन्य उदाहरण के तौर पर हमारे आरंभिक गिरजे के इतिहास में बहुत सी बातें हैं जिसे किसी एक परिस्थिति में जोसेफ ने क्या क्या करते थे या क्या नहीं करते। कुछ लोग इसका विरोध करने का आधार बनाकर उपयोग करते हैं। उन सभी से मैं कहता हूं, उदारकर्ता की शिक्षाओं में विश्वास करें और भरोसा रखें, उनके फलों से हम उन्हें पहचानेंगे। जो रिकॉर्ड हमारे पास है गिरजा उनमें पारदर्शिता रखने का हर संभव प्रयास करता है, लेकिन जो हम प्रकाशित कर सकते हैं उसके पश्चात हमारे सदस्य के पास कभी कभी आधारभूत प्रश्न हो सकते हैं जिनका जवाब अध्ययनों के द्वारा नहीं दिया जा सकता। यह सभी बातों में विरोध करने के गिरजे के इतिहास का प्रारूप रहा है। कुछ बातें केवल विश्वास द्वारा सीखी जा सकती हैं। हमारा असली भरोसा उस गवाही में विश्वास में होना चाहिए जो हम पवित्र आत्मा से प्राप्त करते हैं। परमेश्वर उसके किसी भी बच्चे की स्वतंत्रता में कुछ लोगों के राहत के लिए शायद ही कभी बाधा डालता है, लेकिन वह अवश्य ही हमारे कष्टों के बोझ को हल्का करता और उनको सहने की ताकत हमें देता है, जैसा उसने आलमा के लोगों को हिलम प्रदेश में दिया था। वह प्राकृतिक आपदाओं को नहीं रोकता, लेकिन उनके प्रभाव को कम कर या उन्हें दूसरी ओर मोड़कर या अवश्य ही हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है, जैसा उसने शक्तिशाली तूफान के समय किया था जिसने फिजी मंदिर समर्पण में बाधा डालने का खतरा पैदा किया था। वह सभी विरोधों के माध्यम से हमारे जो बम अभी ब्रसेल्स एयरपोर्ट में गिरा है उनको भी नहीं रोक सकता, लेकिन हमारे कुछ मिशनरी मरे। सभी नश्वर विरोधों के माध्यम से हमारे पास परमेश्वर का आश्वासन है कि हमारे कष्टों को हमारे लाभ के लिए समर्पित कर देगा। हमें हमारे नश्वर अनुभव और उद्धार की महान योजना संदर्भ में उनकी आंखों का सामना भी समझना भी सिखाया गया है, जो हमें जीवन का उद्देश्य बताता है, उद्धारकर्ता के आश्वासन हमें देता है, जिसके नाम में हम मैं इन बातों की सच्चाई की गवाही देता हूं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।